Hello and welcome to the Midnight Slide podcast. My name is Shivani Jadeja and this is the first season Atmanirbhar Bharat, jiska hai ye second episode India's self-reliance in defense sector. So let's get started.
Atmanirbhar Bharat.
स्टॉकहोम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से साल 2013 से 17 के बीच में इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द डिफेंस सेक्टर. दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इंडिया है. इंडिया फाइटर जेट्स के लिए रशिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम पे डिपेंडेंट है. मिसाइल्स के लिए रशिया एंड इसराइल पर और नेवल एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है. दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 12% खर्च करता है डिफेंस पे. अमेरिका स्पेंड्स 34% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस और इंडिया सिर्फ 2.8%. अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है तो डिफेंस पे खर्चा ना करके एजुकेशन, फूड, हेल्थ केयर पर खर्च करे तो वो बेहतर रहेगा. स्पेशली कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड, जब COVID-19 के चलते देश में हेल्थ केयर और फूड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत है, तो डिफेंस पे अभी इतना फोकस क्यों? डिफेंस पे अभी फोकस इसलिए क्योंकि इफ़ वी टेक डिसीजन इन द डिफेंस सेक्टर टुडे, इट विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स आफ्टर 5 to 10 years. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इफ़ वी बिकम सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस सेक्टर, अगर हम देश में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते तो काफ़ी खर्च बच सकता है जो हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे करते हैं इन हैवी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स की. सिक्योरिटी रीजन्स के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे दोनों साइड के पड़ोसी के साथ अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए तो तब किसी फॉरेन कंट्री पर निर्भर करना इंडिया को कमज़ोर बना सकता है. अब डिफेंस इक्विपमेंट अमेज़ॉन ऑर्डर की तरह तो है नहीं कि योर पैकेज विल बी डिलीवर्ड इन 3 to 4 business days. इट कैन टेक अप 2 weeks और इवन मंथ्स. और ऐसी सिचुएशंस में जो फॉरेन कंट्रीज़ के प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई रखते हैं, जिसकी वजह से इंडिया मे हैव टू पे मच मोर देन द रीज़नेबल प्राइस. एंड इन सच सिचुएशन जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. इन 1971 जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब इंडियन आर्मी ने 13 days में पाकिस्तानी आर्मी को हरा दिया था, बट उसकी प्रिपरेशन के लिए इंडियन आर्मी को 8 महीने लग गए थे. ये तो आज से 49 years पहले की बात है. विद मॉडर्नाइजेशन कंट्रीज़ लाइक चाइना हैव हाई टेक इक्विपमेंट्स, सो नाउ वी डू नॉट हैव सच लग्जरी ऑफ टाइम. और अभी इंडिया के पास जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनमें से कुछ कह सकते हैं कि काफ़ी आउटडेटेड है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं MiG-21, काफ़ी पुराने हैं और आए दिन खबरें आती रहती है उनके क्रैश होने की. एक रिटायर आर्मी ऑफिसर ने उनके इंटरव्यू में बोला था कि आर्म फोर्सेस आर आल्सो नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स DRDO इज़ प्रोड्यूसिंग, बिकॉज उससे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस इक्विपमेंट्स अवेलेबल है फॉरेन मार्केट्स में. आर्मी एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला था कि बालाकोट के जो अटैक्स हुए थे उसको टाला जा सकता था अगर इंडिया के पास एक्स्ट्रा एयरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग सिस्टम होते, जो उस टाइम पे सिर्फ एक ही था हमारे पास. और वैसे तो क्वांटिटी के हिसाब से इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, बट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो रैंकिंग बाय इक्विपमेंट एंड आर्टिलरी वी रैंक समवेयर अराउंड 25th or 26th. ध्यान रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी में भारत की सेना पीछे है. 2017 में चाइना को इंडियन आर्मी की ताकत का अच्छे से रियलाइजेशन करवाया गया था जब चाइना ने इंडियन एलाई भूटान द्वारा क्लेम किए गए डोकलाम एरिया पे मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी. डोकलाम स्टैंड ऑफ में इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन जूनिपर कंडक्ट किया था और 3 महीने बाद दोनों कंट्रीज़ ने म्यूचुअल अग्रीमेंट से विदड्रॉल कर दिया था. तो फोकस यहाँ पर जो इक्विपमेंट है उनको बेहतर बनाकर इंडियन आर्मी को लेटेस्ट एंड सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने पर है. यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी जैसी है कि जितनी भी डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है मोस्ट ऑफ देम आर विनर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द परमानेंट 5 nations ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ऐसा मान लेना कि ये कंट्रीज सही में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती होगी जितनी वो खुद अपने आर्म फोर्सेस के लिए यूज़ करती है, कदे उचित नहीं होगा. सो इंडिया के लिए अपने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बूस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. और बहुत से ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनका सिविलियन यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ शील्ड्स जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ हो सकती है. और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में ना बनकर विदेश से इंपोर्ट की गई तो इंडियंस के पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज़ की भी कमी होगी इन केस ऑफ ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज एंड क्रिटिकल सिचुएशंस. जो चीज़ इंडियंस ने बनाई ही नहीं होगी वो बिगड़ी तो उसको ठीक करने वाले भी इंपोर्ट कराने पड़ेंगे. बिकॉज इंडियन रिसर्चर्स विल नॉट हैव ईच एंड एवरी डिटेल्स जो उसको बनाने वाले को पता होगी, विच इंडीड लिमिट्स इंडियाज इंटेलेक्ट एंड एक्सपर्टीज इन द डिफेंस इनोवेशन. R&D और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद सेवरल इनिशिएटिव्स सच एज IDEX इनोवेशन इंडेक्स, डिफेंस इनोवेशन हब एंड डिफेंस एक्सपो. डिफेंस एक्सपो इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो इंडिया के छोटे बड़े हर प्राइवेट प्लेयर, स्टार्टअप्स एंड MSME को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और डिफेंस टेक्नोलॉजी शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. इंडिया अभी 42 कंट्रीज़ को बॉडी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव हेडगेयर एट्सेट्रा एक्सपोर्ट करता है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया रशिया ने मिलकर बनाई है वो भी अब 100% इंडिजीनियस बनेगी, एज इंडिया विल बी नाउ मेकिंग इट्स टारगेट ट्रेसिंग डिवाइस इंडिजीनियसली. अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था उसमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड मेजर अनाउंसमेंट ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक लिस्ट ऑफ वेपन्स पब्लिश की जाएगी. ये लिस्ट में जो भी वेपन्स होंगे उनके इम्पोर्ट बैन कर दिए जाएंगे और ये वेपन्स इंडिया से ही ऑब्टेन किए जाएंगे. एंड दिस लिस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विच विल लीड अस ऑन द पाथ ऑफ मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने 2018 में जो $15 बिलियन प्रपोजल सबमिट किया था 114 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, विच वॉज सेट टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट वॉरप्लेन कॉन्ट्रैक्ट, वो स्क्रैप कर दिया गया है. अब फॉरेन कंपनी से सप्लाई किए गए वॉरप्लेन्स की जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडियन एयरफोर्स और नेवी में इंडक्ट किया जाएगा, विच विल अगेन सेव इंडिया अ लॉट ऑफ मनी. सो मेकिंग इंडियंस मैन्युफैक्चरिंग हब कैन मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्गर नेशन, bring growth in other sectors as well, and can provide thousands of jobs. It can significantly add up to country's GDP, jisme 30% contribution MSMEs, micro, small and medium enterprises ka hai, and India mein sabse zyada exports bhi MSMEs karti hai. The one thing can be done here is that spare parts, common equipments and basic equipments can still be imported. ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो बल्क में खरीदे जा सकते हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज़ इंपोर्ट करना ही प्रेफर करती है. सेम वे इंडियन MSMEs अनलाइक द बिग कंपनीज किसी एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस करती है, इसलिए MSMEs हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल टू एक्सपांड द डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल्सो फुलफिलिंग द डोमेस्टिक नीड्स. लॉकहीड मार्टिन इंडिया के प्रेसिडेंट के मुताबिक मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया नीड्स 3 things. फर्स्ट टैलेंट पूल, second industrial capacity, and according to him India had both of these to make it self reliant in defense. But the third thing, business coalition, is the glitch. Lack of ease of doing business and transparency or decision making mein delay hona are the problems which are keeping India from becoming self reliant. Tejas ka hi example le lo, that project is in pipeline from last 30 years. Defense projects move at snail's pace और India only spends around 1.6% of its GDP on defense. तो funding के मामले में भी ये contracts काफ़ी crunched रहते हैं. Moreover, there are 3 Cs which are also bothering the private players: CBI, CVC and CAG. Undoubtedly, transparency maintain करने के लिए investigation, vigilance और auditing play a key role, but they shouldn't be a hindrance, rather a facilitator. और लास्टली आई थिंक मेक इन इंडिया के साथ मेड इन इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिया का नारा लगाने की भी ज़रूरत है. फॉरेन कंपनीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में सेट करें तो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिज़ाइंस, टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड इनोवेशन पे 100% इंडिया का सॉवरेन कंट्रोल हो. सो विद दिस आई वुड लाइक टू सम अप कोटिंग इंडियाज़ मिसाइल मैन लेट श्री APJ अब्दुल कलाम, who said that all of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. Thank you and namaste.